السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر۔ ترقی یافتہ اقوام کے اجنبی افراد کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوسری اقوام کے اجنبی افراد سے بھی ملتے ہیں، ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا نظر آتا ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ سجی ہوتی ہے۔ اور ہم اگر اپنا جائزہ رہے تو ہم کبھی نکچڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہم آج اسی پر بات کریں گے۔ ہمارا مزاج اور مسکراہٹ ہمارا عنوان ہے، اور اس پر ہم آج غامدی صاحب سے کئی سوالات پوچھیں گے۔ ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اور ساتھ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اقبال ملاٹوالا صاحب۔ السلام علیکم اقبال صاحب، کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام،
الحمدللہ۔ آپ تو اچھا مسکرا رہے ہیں
بھائی، آپ نے بلایا اسی لیے مجھے۔
بالکل اسی لیے بلایا ہے۔ اس سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں غامدی صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، پھر ہم ایک دوسرے سے مسکراہٹ کا تبادلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اور کیا سیکھا؟ یعنی ہمارا جو مجموعی قومی مزاج ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کا کوئی پرتاؤ نظر نہیں آتا۔ ہمیں غالباً یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر موضوعات فضائل کے ہوتے ہیں، یہ بات کہ انسانی اخلاق کیا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، ان کی ضروریات کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ ہم تو یہ تک گوارا نہیں کرتے کہ کسی آدمی نے اگر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا تو ہماری زبان پر شکریہ کے الفاظ آ جائیں، یا ہم آگے جا رہے ہوں تو کسی کے لیے دروازہ کھول دیں۔ ہم سلام کرنے میں پہل تک نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ یہ خیال کرتے تھے کہ اب ہم ملیں گے تو سلام میں پہل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح کی کوئی انانیت نہیں تھی۔ کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ہستی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اپنے لوگوں سے حال احوال پوچھتے تھے۔ بعض اوقات ایسی لطیف باتیں آپ نے کی ہیں کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی کوئی مذاق کا جملہ بہت لطافت کے ساتھ، بہت تہذیب کے ساتھ آپ مسکراتے رہ سکتے ہیں۔ اور حضور کے ہاں تو تبسم گویا آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن گیا ہوا تھا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہی تربیت آپ نے لوگوں کی کی، ہم نے اس تربیت کو آگے منتقل ہی نہیں کیا۔ اور پھر ہماری جو قومی مزاج کی بعض چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ایسی ہو گئی ہیں کہ آپ سڑک پر دیکھیے ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
جی،
ذرا گاڑی آگے بڑھانے پیچھے لے جانے کا معاملہ ہو تو کبھی شائستگی سے بات نہیں کرتے۔
یہی سب ہم ہوتا مغرب میں دیکھتے ہیں، انہوں نے رسول کی سیرت اپنا لی، ہم نے چھوڑ دی۔
میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، دیکھیے ان میں سے کوئی آدمی کوئی عورت راستے میں آپ کو مل جائے تو وہ آپ سے ہیلو ہائے کریں گے، تھوڑا سا مسکرائیں گے، آپ سے بات کریں گے، کوئی آپ کو سلام کریں گے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر آپ چلتے ہوئے ایک جھاڑی درمیان میں آ جائے اور آپ ادھر سے گزرے اور ادھر سے گزرے تو تب بھی دوسرے کو السلام علیکم کہیں۔
جی،
یعنی اس طرح زیادہ سے زیادہ تعلقات محبت کے بڑھیں۔ لیکن ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے؟
لیکن اس پہ کچھ قصور ہماری تربیت، تہذیب تو خیر ہے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمیشہ سیریس رہنا، بڑوں کے سامنے مسکرانا نہیں، چہرہ اپنا بہت ہی سیریسنس کے ساتھ پیش آؤ، کہیں پر بھی جاؤ سیریسنس کے ساتھ، کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بدتمیزی کرے ہو اگر مسکرا رہے ہو۔ یہ چیزیں بھی کچھ ہمارے کلچر میں بہت ہی عام ہو گئی ہے۔
یہ بدقسمتی ہے، یہ حالانکہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اپنے بڑوں سے بھی ملتے ہیں آپ مسکرا کر ملتے ہیں، یا بڑے آپ سے ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں۔ شفقت ایک اور چیز ہے، محبت ایک اور چیز ہے، احترام ایک اور چیز ہے۔ مسکرانے میں کیا چیز ہے جس میں حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی مسکراہٹ کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کسی کے اوپر اس کو مذکہ بنانے کے لیے بھی مسکرا سکتے ہیں، اور آپ اپنی خوشی، اپنی محبت، اپنے تعلق کے اظہار کے لیے بھی مسکراتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی ہماری ایک کلچرل تہذیبی تربیت اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ملنے ملانے کے آداب کے خلاف ہے۔ بڑوں کے معاملے میں آپ جب تک ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ادب اور احترام کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ تعلیم اللہ کے دین نے نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ خاص طور پر جو عرب مزاج تھا اس زمانے کا، اس میں بھی اس طرح کے تکلفات نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم عجم میں آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو فارسی عجمی روایات ہیں ان میں بھی بہت سی تہذیبی اقدار تھیں، جن میں لوگ اشعار پڑھتے تھے، بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر ان کو کچھ سناتے تھے، ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ آپ سادی کی گلستان کو پڑھیے یا بوستان کو پڑھیے، جو ہمارے اس زمانے کے کلچر یا تہذیب کو بیان کرتی ہے، اس میں آپ کو وہ باتیں ملیں گی کہ آج شاید آپ کے لیے حیرانی کا باعث ہو کہ آپ بزرگ ایسی باتیں بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو بتا سکتے ہیں، ایسی داستانیں اور کہانیاں بھی سنا سکتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر مسکراہٹ کے ساتھ کسی دوسرے کی طرف دیکھ لیں تو اس میں بھی فحاشی اور اڑیانی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کدھر سے ہمارے دین میں داخل ہوئی ہے، تہذیب میں داخل ہوئی ہے۔ اس نے بڑا برا اثر چھوڑا ہے، یعنی ہمارا جو آپس میں ملنا جلنا، اب یہ دیکھیے کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، مغرب میں بھی لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں۔ आप साइंस के जो मैगज़ीन निकलते हैं उनको पढ़ें, फ़लसफ़े के जो मैगज़ीन निकलते हैं उनको पढ़ें, उनके अंदर बहुत सरगर्म बहसें हो रही होती हैं, ज़बरदस्त किस्म के इल्मी इख्तलाफात होंगे, लेकिन उन लोगों को आप बैठते देखें, मिलते देखें, ये मालूम होगा कि जैसे कभी किसी चीज़ में इख्तलाफ किए
जी।
वो इल्म के इख्तलाफ को, रिसर्च के इख्तलाफ को अलग रखते हैं, बाहमी ताल्लुकात की तहजीब को बिल्कुल अलग रखते हैं। तो मैंने तो बारहा ये देखा है कि अगर आपका किसी के साथ इख्तलाफ है और इत्तेफाक से आप किसी मजलिस में इकट्ठे हो गए हैं, तो अब हाथ में लाना भी गिरा होता है एक दूसरे के साथ, यानी कोशिश करते हैं कि वो इधर से गुजर जाए, मैं इधर से गुजर जाऊँ, आमना सामना भी ना हो,
नजरें ना मिले,
तो नजरें ना
वैसे शायद जरूर
ये मालूम नहीं क्या चीज़।
ये कुछ हमारे यहाँ ये कुछ अजीब वो इम्प्रेशन लोग मुस्कुराना बदतमीज़ी है। अब तमीज़ से इसका क्या लेना देना, तमीज़ अपनी जगह मुस्कुराना या किसी कहते गिव अ वार्म स्माइल
तो कि खुद तहजीब और तमीज का एक हिस्सा है
जी।
यानी अगर आप मुंह बना के बैठे हुए हैं तो ये बदतमीजी क्यों नहीं है। एक ऐसा मौका है जिसमें आप किसी को खुश दिली के साथ खुश आमदेद कहें और उस मौके के ऊपर आप मुंह बना के बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने तमीज़ और तहजीब दोनों को नहीं सीखा। तो ये बड़ा सिखाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वो गली में जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, किसी शॉपिंग मॉल में हो, एक दूसरे को
सफ़र कर रहे हो,
कुछ एहसास हो उनको कि हम एक दूसरे से मिल मिला सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको सीखने के लिए तैयार
हैं। साहब अभी आपने बहुत अच्छी मिसाल दी रसूल पाक की कि आप सहाबा कोशिश करते थे कि वो पहल करें, लेकिन रसूल पाक हमेशा सबकत ले जाते थे, वो उम्मत के लीडर थे, उसके बावजूद आप हमेशा पहल करते थे सलाम करने में। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बुजुर्गों को अदब करना चाहिए, हमें पहले छोटों को सलाम करना चाहिए, जो कि यकीनन बहुत अच्छी बात है, बुजुर्गों का अदब होना चाहिए, लेकिन बाज़ात हम देखते हैं ख़ानदान में बड़े नाराज़ हो जाते हैं इस बात को लेकर कि अगर वो तो सलाम ना करें, एक्सपेक्ट ही किया जाता है हमेशा छोटे ही करें, और रह गया कोई बच्चा तो फलाने ने हमें सलाम नहीं किया, उसको बहुत बुरा माना जाता है। इसी तरह हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखा जाए तो भी ये बॉस एक्सपेक्ट करता है कि मेरे लिए मुलाजिम खड़ा होगा या मुझे सलाम किया जाएगा, जबकि आता वो देर से, आइडियली तो उसे सलाम करना चाहिए।
मैंने तो आपसे इसीलिए अर्ज़ किया कि जो सबसे मुकद्दस, सबसे बुज़ुर्ग हस्ती हो सकती है वो अल्लाह के पैगम्बरी की हो सकती है ना, तो उन्होंने तो ये बात सिखाई। ये बच्चों को ये बताना कि वो आगे बढ़ के सलाम करें, ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूर बताना चाहिए, लेकिन बुज़ुर्ग ये ख्याल करें कि उन्हें इंतज़ार करना है। यानी हुजूर ने भी यही तालीम दी कि जो छोटे हैं वो बड़ों को सलाम करें, तालीम ये दी, लेकिन रवैया क्या इख्तियार किया कि खुद सबसे पढ़ कर आगे सलाम। यानी इसका मतलब तो यह है कि आप अपने बड़े पन के जोम में मुब्तला हो गए, आप हर वक्त इस चीज़ पर निगाह रखते हैं कि मैं इल्म में या अक्ल में या उम्र में बड़ा हूँ, तो ये चीज़ तो आहिस्ता आहिस्ता आदमी को हर चीज़ में छोटा कर देती है। यानी अगर आप अपने बड़े पन के जोम में मुब्तला हो जाए तो असल में आप अंदर से छोटे होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर ये एहसास रहना चाहिए। और इसी तवाज़ो को सबसे बढ़कर हुजूर ने हमें सिखाया, नरमी, शफकत, मोहब्बत। बड़े आगे बढ़ेंगे और सलाम करेंगे या बच्चों शफकत का हाथ रखेंगे तो उन्हें भी इसकी तरबियत मिलेगी या तालीम मिलेगी। ये चीज़ एक अलग है कि बच्चों को हमें क्या कहना है, बड़ों को क्या कहना है, लेकिन ये कि बड़े इसको अपने लिए मसला बना लें। हर शख्स को मुस्करा कर दूसरे को देखना चाहिए, मुस्करा कर मिलना चाहिए और माथे पर शिकने नहीं होनी चाहिए।
ये प्रेस्टीज इशू नहीं बनना,
ये मसला असल में आपकी इज्जत नफ्स का मसला नहीं बन जाना, अनानियत का मसला नहीं बनकर जाना चाहिए।
तो एक और आम तौर पर देखने में आता है कि हमारे यहाँ एक तो उलमाए कराम वाला तबका भी और आम तौर पर जो लोग मजहबी रुझान की तरफ ज़्यादा मायल हो जाते हैं उनमें भी देखना जाता है कि उनकी शख्सियत संजीदा होती चली जाती है और गोया लगता है कि मुस्कुराना जो है उससे उनकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो मुस्कुरा देंगे तो चेहरे पर मस्किनी तारी हो जाती है। क्या दीन हमें सिखाता है कि दुनिया की खुशियों को छोड़ दो?
दीन तो ऐसी कोई बात नहीं सिखाता, बल्कि मैं तो हमेशा उलमाए कराम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरीके से साइंस के माहिरीन हैं, तिब के माहिरीन, यानी एक डॉक्टर है या एक बड़ा साइंसदान है, तो क्या वो कोई अलग लिबास इख्तियार करता है? ऐसे आप होते हैं, वैसे ही रहता है
जी।
यानी जो आपकी कौम का लिबास है, जो एक महज़ब लिबास है, जो दुनिया में एक बना हुआ लिबास है, आज का लिबास है, वही पहनते हैं सबके सब। इसके लिए उलमा के ख़ास लिबास की क्या ज़रूरत है? क्या खुदा के पैगम्बर ने हमें इसकी तालीम दी है? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिबास पहनते थे जो आपकी कौम के शुरफा पहनते थे। यानी हुजूर ने अपने लिए किसी खास लिबास का इंतखाब नहीं किया, बल्कि यहाँ तक बयान किया जाता है कि बाज़ औक़ात मजलिस में बैठे हुए होते थे और बाहर से कोई आदमी आता था तो उसको ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाता था कि हुजूर कौन से, यानी कोई शख्सियत से अंदाज़ा लगाता था, लेकिन लिबास में, बैठने में कोई तफरीक नहीं होती थी। बल्कि इस हद तक आप देखिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जब साथ थे हिजरत के सफ़र में, तो बाज़ लोग उनसे पूछते थे कि आपके साथ कौन है। यानी इस बात का कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया हुजूर ने कि ये आलिम का लिबास ये होना चाहिए और उसको इस तरीके का कोई जुब्बा पहनना चाहिए, इस तरह का अमामा बांधना चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं था। जो लिबास आपकी कौम के शरफा पहनते थे वही आपने पहना। हमारे यहाँ भी यही करना चाहिए। देखिए, एक आलिम को जब एक शख्स देखता है उससे दीन सीखता है, तो वो उसको आइडियलाइज भी करता है। जब उसे मालूम होता है कि अच्छा अगर मैं दीन को इख्तियार करूँगा तो फिर मुझे ऐसी शख्सियत बनना होगा, और वो महसूस करता है कि तो बड़ी अजनबी सी शख्सियत है, तो वो दीन से भी गुरेजा होता है। दीन में ऐसी कोई बात नहीं है, आप आम इंसानों की तरह रहें, आम इंसानों की तरह बैठें, आम इंसानों की तरह उनके साथ गपशप करें। यानी वो जो संजीदगी मतलूब है वो हकायक के बारे में संजीदगी है, ये कि बहरहाल हमें इस दुनिया के अंदर इम्तहान के लिए भेजा गया है, जाना है एक दिन परवरदिगार के हुजूर में, जवाबदेह होना है। एक है बेपरवाही का रवैया, लाउबालीपन का रवैया, संजीदा हकायक के बारे में भी मजे का उड़ाने का अंदाज, इससे रोका गया है।
वो तो
ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वो तो देखिए मिसाल के तौर पर मैं और आप बैठे हुए अपने मुल्क के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई मंसूबा बनाएं, उसके दौरान में एक आदमी मजे का उड़ाना शुरू कर दे तो मुझे भी गिरां गुजरेगा, आपको भी गिरां गुजरेगा। यही मामला मजमूई तौर पर जिंदगी के बारे में है। जिंदगी एक संजीदा हकीकत है, लिहाजा उस संजीदा हकीकत को उस हकीकत के एतबार से संजीदा ही लेना चाहिए। लेकिन उस संजीदा हकीकत को संजीदा लेने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के साथ मिलने जुलने में यानी एक लतीफ़ रवैया इख्तियार ना करें। ज़िंदगी के अंदर लताफत, बल्कि मैं तो ख़ास तौर पर यह कहता हूँ कि उलमा के यहाँ अदब का मुताला ज़रूर होना चाहिए। आला अदब इंसान के अंदर लताफत पैदा करता है, शायरी का, फिक्शन का, ये ड्रामा है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अगर आपने अच्छा मुताला नहीं किया है तो आपके अंदर वो एक ख़ास तरह की लतीफ़ हिस मरना शुरू हो जाती है। इंसानी जज्बात और एहसास की लताफतों को आप महसूस करना बंद कर देते हैं, एक ख़ास तरह की सख्ती और खुशूनत आपके अंदर आ जाती है जिससे लोग वहशत महसूस करते हैं, और वो ये समझते हैं कि गालिबन दीन ही इस नौयत
का,
दीन में ऐसी कोई बात नहीं।
बिल्कुल, यही मुझे सवाल को, इसी सवाल को आगे बढ़ाना, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारा मिजाज और मुस्कुराहट के उनवान से आज हम गांधी साहब से सवालात करते हैं, दीन इस बारे में क्या कहता है। गांधी साहब, ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि फ़नून लतीफ़ा का मुताला उलमाए कराम को भी करना चाहिए, जिसमें शायरी, फिक्शन, म्यूज़िक, पेंटिंग, तस्वीरकशी, ये सब आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये आम लोगों को भी मना किया जाता है कि ये हराम है और ये गलत तरीके हैं।
ये हद तक के कहते हैं हंसना भी हराम है,
तस्वीरें ना खिंचवाओ, पेंटिंग ना करो, उसमें जान डालनी पड़ जाएगी। म्यूजिक के लिए तो, गना के लिए तो सख्ती से कहा जाता है कि जी
सारी बातें गलत फहमी पर मबनी है। देखिए बात यह है कि तमाम फ़नून लतीफ़ा ये जीनत की चीज़ें हैं जो अल्लाह ने पैदा की हैं, यानी कहीं कलाम में जीनत पैदा होती है, कहीं गुफ्तगू में जीनत पैदा होती है। ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये अल्लाह की पैदा करना है। शायरी बजाय ख़ुद अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। आपको मालूम है कि जो चार किताबें नाजिल की गई उनमें से ज़बूर बिल्कुल शेर के तरीके पर नाजिल हुई, वो मजामीर की शक्ल में थी। और अगर अभी भी आप ज़बूर निकाल के देखें, बाइबल का मजमूआ अगर आपको कहीं से मिले तो उसके अंदर ज़बूर भी मौजूद है, उसको आप निकाल के देखें, उसका हर जो मजमूर है, जैसे हमारे यहाँ गज़लियात के दीवान होते हैं बिल्कुल उसी तरह तरतीब दी गई है, तो अगर आप उसके मजमूर को निकाल के देखें तो उसमें से हर मजमूर पर ये लिखा हुआ होता है कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम ने फलां साज के साथ पढ़ा,
यानी
गीतों की
सुर के साथ।
अच्छा, और उनके बारे में ये बयान करता है कुरान मजीद कि उनकी आवाज़ इतनी गैर मामूली थी कि जब वो ये मजामीर पढ़ते थे तो पहाड़ मालूम होता था कि उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, परिंदे मालूम होता था कि उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर ये चीज़ रखी है, ये क्या आपका ख्याल ये है कि बीमारी रख दी है? नहीं, असल चीज़ जो है वो इन फ़नून लतीफ़ा का बुरा इस्तेमाल है। फ़नून लतीफ़ा क्या, मैं आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू में अगर बेहूदगी आ जाती है तो उसके बारे में भी मज़हब हमें तवज्जो दिलाएगा, अखलाक तवज्जो दिलाएगा, तहजीब तवज्जो दिलाएगी। तो एक चीज़ यह है कि आपने किसी बेहूदगी का इर्तकाब किया है, वो शायरी में भी हो सकती है। हमारे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये कहा है ना कि जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो वो किस चीज़ पर तबसरा कर रहे हैं? शायर तो वो खुद हैं, वो इस पर तबसरा कर रहे हैं कि आपका कॉन्टेंट क्या है। यानी अगर आपने जाफ़र ज़टल्ली के अंदाज़ की शायरी करनी है और आपने बेहूदगियों को शायरी का मौजू बनाना है तो मैं भी उस पर एतराज़ करूँगा, आप भी। लेकिन लतीफ़ जज्बात, लतीफ़ एहसास, जैसे गालिब बयान करता है, मीर बयान करता है, इकबाल बयान करते हैं या और अच्छे शोरा बयान करते हैं, फैज़ ने देखिए कितनी गैर मामूली हकीकतें हैं हमारी ज़िंदगी की जिनमें गमे दौरा को गमे जाना के साथ मिला के बयान करती है, और ऐसी उम्दा शायरी की है कि आज भी एक जिंदा शायर की हैसियत से आप उनको पढ़ते और देखते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में बहुत बड़ी गलती हुई है। यानी फ़नून लतीफ़ा के बारे में ये पहलू कि उसमें कोई ख़राबी नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप ज़रा सा इसको एक जानब ले जाएँ तो इसमें ख़राबी भी पैदा हो जाती है। इसको लोगों ने नहीं समझा। यही मामला तस्वीर में हुआ। तस्वीरें उस ज़माने में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शिर्क का ज़रिया बनती थी, यानी बुत बना लिए जाते थे, उनको पूजा जाता था, उनसे रोका गया। और देखिए बात यह है कि एक आदमी एक तस्वीर बनाता है और ये ख्याल करता है, या कोई मुजस्मा बनाता है और ये ख्याल करता है कि अब हम इसके पास जाएंगे और इस मुजस्मे से हम अपनी हाजतें पूरी कराएंगे। तो इसके बारे में हुजूर ने ये फरमाया कि जो लोग ये ख्याल करके कि ये पत्थर के बुत उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, इनको बनाते हैं या तस्वीरें बनाते हैं, फिर खुदा क़यामत में कहेगा कि जिनको ज़िंदा समझ रहे थे डालो इनमें जान, ये उनके बारे में फरमाया था। इसका मेरी आपकी तस्वीर, हमारे माँ बाप की तस्वीर, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये फ़नी तस्वीरें, फ़नी मुजस्मे जिनमें आर्ट के नमूने बनाए जाते हैं, जिनमें इंसान की हिस्से जमालियात का इजहार होता है, ये हिस्से जमालियात और हिस्से अखलाक, यही तो इंसान का शरफ है। यानी मुझ में और जानवरों में और फ़र्क क्या है? बैसीत इंसान दो ही फ़र्क है, एक ये कि मैं एक मॉरल बींग हूँ, मेरे अंदर एक अखलाकी एहसास है, मैं चीज़ों के बारे में हुक्म लगाता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है ये बुरी है, मैं झूठ और सच में तमीज़ कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि मेरे अंदर खूबसूरती को अप्रिशिएट करने का जज्बा दिया गया है। मैं एक फूल को देखता हूँ तो एक जानवर के लिए तो फूल भी खाने की चीज़ है, वो चारा समझ के उस पर मुँह मारेगा, मेरे लिए वो नज़र नवाजी की चीज़।
अब हिस्से जमालियात का आप जिक्र कर रहे हैं, म्यूज़िक की भी इसमें बात आई। आपने कहा कि ज़बूर नाजिल ही शायरी और सास के साथ जो है सुनाया करते थे, हज़रत दाऊद, लहने दाऊदी भी कहा जाता है। तो ये हमारे मज़हब में कहाँ से आया? खुसूसन हमें देखते हैं शादी ब्याह की तकरीबात खुशी की तकरीबात होती हैं, लेकिन अब लोगों ने कहा है कि सिर्फ दफ़ अलाउड है क्योंकि रसूल अल्लाह के ज़माने में बच्चों ने उनकी आमद पर मदीने में दफ़ पर जाई थी, तो आप उससे ज़्यादा जो है वो अल्लाह बातें हैं और एक दीनी फरीज़े को आप लोगों ने जो है वो गलत तरीका दे दिया है।
अगर उन देहाती बच्चियों के पास कोई दफ़ से बेहतर साज़ होता तो वो भी बजाती। देखिए बात यह है कि लोग ख्याल नहीं करते कि मदीना एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर बच्चियों के पास क्या रुबाब और तंबूरे होंगे। वो दफ़ थी उनके पास, उसी से उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि दफ़ अलाउड है, इसका मतलब ये था कि जब आप कोई पाकीज़ा बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, लतीफ़ बात करते हैं, तो उस बात के लिए आप दफ़ बजा के अपने जज्बात का इजहार करें। ये गना क्या है? यानी इंसान के गले के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरह का लतीफ़ सुर रखा हुआ है, इसी चीज़ को आप साज़ों में मुंतकिल कर देते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मालूम नहीं कि लोग कैसे ये समझते हैं। आप देखिए गना के बारे में, आप कुरान मजीद के बारे में हमें ये हिदायत की गई है कि इसको गा के पढ़ना चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर आहंग है,
कि हमारा फ़िक़्ह का गलबा है, ये इस वजह से गलती हो रही है फ़िक़्ह के मसाइल में, या मज़हब का ही तस्वुर गलत पेश किया जा रहा है?
इसमें कई चीज़ें हैं, अगर आप इसको तारीखी लिहाज से देखें तो इसमें कई चीज़ें मिल गई हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आप किसी मज़हब का तारुफ़ कराते हैं तो वह इंसानों से मुतल्लिक होगा। अब मुसलमान वहाँ से निकले, अरब के सादा माहौल से, यहाँ आगे अजम भी मौजूद था, हिंदुस्तान भी मौजूद था, यहाँ पहले से बहुत से मज़हबी तस्वुरात थे, यानी ईसाइयों के यहाँ भी बहुत से मजहबी तसव्वुरात थे, इसी तरह ज़रतुश्तियों के यहाँ बहुत से मजहबी तसव्वुरात थे जो सदियों में बन गए हुए थे। उन मजहबी तसव्वुरात को लोगों ने ख्याल किया कि हमारे यहाँ भी होने चाहिए। अच्छा, मज़हब के बारे में एक आम तसव्वुर जो सूफियाना मज़ाहिब ने पैदा किया था, उसके भी असरात हुए। चुनाँचे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग सूफियाना मज़ाहिब से मुतासर हुए। सूफियाना मज़ाहिब में दुनिया को माया का जाल समझा जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि दुनिया को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तर्क दुनिया नहीं करेंगे, आप आला मर्तबे नहीं पा सकते। हमारे मज़हब का या अल्लाह ताला के मज़हब का बिल्कुल तसव्वुर और था। इसमें तो यह था कि यही दुनिया तुम्हारे लिए कारगाह है, इसी में तुम्हें उतरना है, इसी के अंदर तुमको जद्दोजहद करनी है, तुम्हें कारोबार करना है, मंडी में जाना है, तुम्हें दुनिया के अंदर खुदा के ख़जाने तलाश करने हैं, खुदा के उलूम को तलाश करना है, लेकिन आला अखलाकी उसूलों पर कायम रहना है। हमारे मज़हब की तालीम दी थी या अल्लाह के मज़हब की तालीम ये थी, तो उसके असरात भी हुए उनके ऊपर। इससे हमारा एक तसव्वुर बना हुआ है, वो तसव्वुर हमारी फिर फ़िक़्ह में भी दाखिल हो गया और बहुत सी चीज़ें जो रवायात के अंदर आ गई। रवायात में क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात किसी ख़ास मौके पर कही, वो उस मौके पर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसको उसके कॉन्टेक्स्ट सियाक सबाक से अलग करके लोगों ने उससे कोई उसूल निकाल लिया। इससे बहुत सी खराबियाँ, मसलन आप मौसीकी के बारे में आप देखिए, यानी तमाम आप ज़खीरे को देखिए, कुरान मजीद, कुरान मजीद कमोबेश 23 साल में नाजिल हुआ है, एक बड़ी किताब है, यानी कमोबेश 650-650 सफ़े की किताब बनती है जब आप उसको मुरतब करके छापते हैं। इस सारे अरसे में कुरान मजीद कुरैश पर गुफ्तगू कर रहा है, अहले किताब पर गुफ्तगू कर रहा है, उसमें उनकी गलतियों और कोताहियों पर उनको तवज्जो दिला रहा है, उनके सामने दीन की वजाहत कर रहा है। मैं भी जानता हूँ, अरबी अदब का हर तालिबे इल्म जानता है कि अरबों के यहाँ मौसीकी का, लौंडियों के रक्स का, उनकी मजालिस का, गना का बहुत रिवाज था। एक लफ्ज़ कुरान ने उनके बारे में नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह यह है کہ قرآن مجید کے ہاں یہ چیز اصل نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر پاکیزگی کا احساس پیدا ہو، اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو آپ سمجھیں، اس کے بعد آپ خود ان کو اپلائی کریں، دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں. حدیثوں کے اندر کوئی روایت موجود نہیں، بلکہ ایک بڑے عالم ہے ابن حزم، انہوں نے تمام روایات پہ تبصرہ کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی ایک بھی موسیقی کے بارے میں روایت ایسی نہیں جو ثابت ہو.
جی
یہ صورتحال ہے، یعنی جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سند کے لحاظ سے ضعیف روایتیں ہیں، ان کو بنیاد بنا کر آپ حرام حلال کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ آپ نے کسی موسیقی میں یا کسی آپ نے غنا میں یا آپ نے کسی شاعری میں یا ادب میں یا گفتگو میں آپ نے فحاشی کو موضوع بنا لی ہے، ولگیرٹی کو موضوع بنا لی ہے، حق تلفی کو موضوع بنا لی ہے. تو اگر آپ ان کے بارے میں بات کریں گے تو پھر تو کہا جائے نا کہ آپ پہ غلط کام کر رہے ہیں. تو چیزوں کا استعمال ہے جو صحیح یا غلط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں حرام نہیں ہیں.
چلے بریک لینے جا رہے ہیں، اقبال صاحب صرف خاموش بیٹھے مسکرا رہے ہیں. بریک کے بعد سوال آپ کا لیں گے ہم، ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارا مزاج اور مسکراہٹ کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں اقبال مرادبرا سے. اقبال صاحب آپ تو مسکراتے ہیں بہت ماشاء اللہ سے، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کے سوالات بھی ہیں. سوال
جی جی نہیں، یہ گاندھی صاحب یہ نوٹ کی میں نے، یہ بات آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ ہم نے بہت سارے ریت رواج کو ایک مذہبی جمع پہنا دیا. اب میں تو خیر عربوں کے کلچر کو اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ یہاں رہا ہوں میں بہت عرصہ، دبئی میں، قطر میں، تو یہاں پر تو موسیقی کا جو ہے رواج جیسے آپ نے بتایا بہت عام ہے، ہمیشہ رہا ہے، اور وہ ناچنا اور گانا یہ بہت ہی عام ہے. تو یہ ہمارے علماء نے یہ چیز کو کیوں ایک اور ہی مذہبی جامع پہنا کے ہم لوگوں کے لیے حرام کر دیا؟
مگر علماء کرام تو اس خطے میں بھی منع کرتے ہیں بہرحال. نہیں
بس کرتے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ جب کسی چیز کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ صرف اس غلط استعمال پر لوگوں کو توجہ دلائی جائے، آپ اس چیز ہی کا کلا کما کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بالکل، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. شروع شروع میں جب ہمارے یہاں ٹیلی ویژن آیا تو اب ٹیلی ویژن تو ایک ذریعہ ہے نا، اس میں آپ اچھی چیزیں بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں، آپ خبریں بھی دے رہے ہیں، آپ تبصرے بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی بےہودہ کام بھی کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا بات بیان کرنے کا، تو کوئی آدمی کہے کہ ہم تو چاہتے ہیں ٹیلی ویژن توڑ دیا جائے،
اور کیا
کچھ لوگ رکھتے نہیں،
لوگوں نے کیا بھی. اب یہ ایک چیز کے اوپر تبصرہ کرنے کا ایک انداز ہے، اس کو آگے بڑھا کے آپ نے ایک پورے کے پورے آلے ہی کو ناجائز قرار دے دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب شروع شروع میں لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو ہمارے علماء نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ آلہ لہو ہے، یعنی کھیل کود کا آلہ ہے، اس کو مسجد میں نہیں لے جایا جا سکتا.
صحیح ہے،
50-60 سال نہیں گزرے، آپ لاؤڈ اسپیکر کو مسجد سے نکالنا ناممکن ہو. یعنی اگر آپ اس پر کوئی قانون بنائیں تو ناممکن ہے کہ آپ اس پر عمل کرا لیں. بلکہ ایک مرتبہ میں ایک لاہور کے علاقے میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر پر کچھ پابندی عائد تھی، تو مولوی صاحب لاؤڈ اسپیکر ہی پر تقریر کر رہے تھے اور اس پابندی پر گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگوں نے ہم کو اس کا عادی کیا، اب حال یہ ہے کہ آواز ہی نہیں نکلتی اگر یہ سامنے موجود نہ ہو، اور اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی ہم عائد کر رہے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگ ایک متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک بڑی اچھی تعلیم دی
سلیکٹیولی وہ ہر چیز،
آپ چیزوں کو دیکھیں جیسے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، پھر اس اصول کو سمجھیں جس کی بنیاد پر دین ہمیں توجہ دلاتا ہے. یہ دیکھیے سورہ اعراف کی آیات ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے یہ بتا دیا کہ میری زینتیں میں نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ فرمایا کہ تم اسراف نہ کرو، چیزوں میں حدود سے تجاوز نہ کیا کرو، اور جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں وہ چند چیزیں ہیں، اس کے سوا باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. انسان کو یہ کرائیٹیرین دے دیا کہ یہ پانچ چیزیں ہیں، ان کو دیکھ لو کہیں یہ نہ پائی جائے. میں نے آپ کو حالی کا شعر اسی لیے سنایا تھا کہ انہوں نے شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے، وہ خود شاعر ہیں تو وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاعری حرام نہیں ہے. شاعری تو دیکھیے علامہ اقبال بھی شاعر ہے، فیض بھی شاعر ہے، اس سے پہلے بہت بڑے اعلیٰ درجے کے شاعر ہوئے ہیں. شاعری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے آپ دوسرے لوگوں کے لطیف جذبات کو آپ متحرک کرتے ہیں. और आप अपनी बात ऐसे तरीके से पहुंचाते हैं कि जिसमें हो सकता है इस्तदलाल का पहलू ना हो, लेकिन वो दिल से उठती है और दिल में जाके तराजू हो जाती है, यानी आज दिल खेजत बर दिल रेजत की कैफियत पैदा हो जाती है। तो बड़ी गैर मामूली चीज़ है, लेकिन इसी शायरी को आप बहुत बुरे मौजूआत को बयान करने का ज़रिया बना लें तो फिर अखलाकी लिहाज से तवज्जो दिलाई जाएगी। अब तो हमारे दीन का मिजाज ये है।
ये खलीजी इन इलाकों में ये ट्राइबल इनका एक है दस्तूर कि किसी खुशी के मौके पे लड़कियां खड़ी होती है, बाल खुले होते हैं और वो सर हिलाते हुए म्यूज़िक के साथ,
उनका अपने
वो एक अपना कल्चरल वो है कबायली जो इस एरिया में। अब वो उसी बात पे कि भाई बाल जो है वो खुले नहीं होने चाहिए, और ये तो बाकायदा यानी मैंने तो टेलीविज़न पे बहुत आम देखा, हर खुशी के मौके पे चाहे इनकी वो यौमुल इस्तक़लाल हो, जो भी हो, कुछ भी हो बड़ा दिन, ये खुशी मनाते, ईद के रोज़ भी ये आम रक्स नज़र आता है टेलीविज़न पे। और बाल पे वही पाबंदी एक तरफ, दूसरी एक लगाई हुई है कि बाल दिखाना नहीं चाहिए और ये हराम है। और
उम्र का
देखिए दोनों तरफ बाज़ औक़ात थोड़ा सा गुल्फ हो जाता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ईमान वालों अब तुम दीन के मामले में गुल्फ न किया करो। गुल्फ का मतलब क्या है? एक्सट्रीमिज़म, ये इख्तियार न किया करो एक तवाज़ुन और एतदाल के साथ। आप ज़िंदगी में जो काम भी करते हैं, उठना है, बैठना है, तकरीबात है, उनके अंदर एक तवाज़ुन एतदाल खूबसूरती होनी चाहिए। खूबसूरती लताफत इसको दीन नहीं रोकता। वो ये चाहता है कि हमारे अंदर एक तहजीबी रचाव हो, यानी एटिकेट्स का एहतराम हो, ये चीज़ हो। बालों के बारे में भी जो तसव्वुरात हमारे हिंदुस्तान में कायम कर लिए गए हैं, ये कहीं कुरान मजीद में बयान नहीं हुए, किसी हदीस में बयान नहीं हुए। आपको मालूम है कि एक ज़माना वो रहा है जब हमारे यहाँ लोग ये कहते थे कि ख्वातीन को अगर घर से बाहर जाना है तो उनके लिए कहार आएंगे, डोली लाएंगे, वो आके उसको ड्यूड़ी में रखेंगे, वहाँ बाहर निकल जाएंगे, खातून बैठेगी, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा भी रखा जाता था ताकि उसके वज़न का एहसास ना होने का यानी ये तक था। अच्छा, बड़ी बूढ़ियाँ उनको ये कहती थी कि देखो कहीं तुम्हारे बालों पर किसी गैर महरम की निगाह ना पड़ जाए, अगर कहीं बाल टूट जाते हैं ना बाज़ वक़्त कंघी करते हुए, तो इनको समेट कर कहीं दफन कर दो। आप कभी पुराने लोगों से, दिल्ली के लोगों से बात करें और या पुराने नावल पढ़े आप, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वो बयान करते थे कपड़े धो के ख्वातीन बाहर उसको ना डालें सूखने के लिए, वो अंदर कहीं डाल के सुखाया जाए। ये हमारे यहाँ जो चीज़ें थी, इनमें से कौन सी चीज़ें जो कुरान में बयान हुई, कौन सी चीज़ें जो हदीस में बयान हुई है? तो कल्चरल चीज़ें बाज़ औक़ात इतना गलबा पा लेती हैं कि लोग समझते हैं यही दीन
है।
अच्छा, वो चूंकि बड़ी बूढ़ियाँ बता रही होती हैं, बुज़ुर्ग बता रहे होते हैं, और वो उसके अंदर कोई मजहबी अंदाज भी पैदा कर देते हैं। आप पुरानी औरतों को देखें, वो आमतौर पर कहें देखो अगर तुमने झूठ बोला बच्चे को झूठ के बारे में, तो अल्लाह मियाँ तुम्हारी ज़ुबान पर कोयला रख दे, कहती थी ना। अच्छा, अब बच्चे को जो इससे पैगाम मिल रहा है वो ये है कि ये गालिबन अल्लाह ताला ही का काम है या कोई मजहबी चीज़ है, तो क्या ये वाकयातन अल्लाह ताला का काम है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ रिवायत बन जाती हैं, ज़रबुल मसल बन जाती हैं। इसी तरह बालों के बारे में, लिबास के बारे में, औरतों के बारे में बहुत से कल्चरल तसव्वुरात हैं कि जो अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब लोगों के यहाँ बहुत सी इस तरह की चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन जब ये मौजूद थी तो इसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि इनकी खिलाफवर्जी हो सके। मैंने खुद अपने गांव में ये देखा है कि बड़े बूढ़े किसी बच्ची को बाहर फिरते हुए भी देख लें, अगर वो 10-12 साल की हो गई है, थप्पड़ मार देते थे। यानी ये रही ना एक ज़माने में हमारी तहजीब, कोई बुरा भी नहीं मानता था। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि ये बातें असल में तो कोई ऐसी सख्ती की बात नहीं थी, लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज़ें आ गई थी। मैंने एक मरतबा एक मजहबी आलिम को यह कहा, उनकी कोई राय थी जिस पर मैंने तनकीद की, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपकी बात आज भी गलत है, 200 साल पहले भी गलत थी, 200 साल पहले आप करते तो चल जाती, अब चलनी भी नहीं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब नहीं चलेंगी, उनको ज़माना खुद फेंक दे।
लेकिन हम मुसलमानों के साथ ये गालबन ये इम्प्रेशन भी अब हम लोगों ने ही पैदा किया है, स्पेशली यानी आप देख ले वेस्ट में कि जहाँ पर भी वो कहते मुसलमान तो वो कहते कि ये डेंजरस है, सीरियस है। यानी हम लोगों ने अपना इम्प्रेशन भी ऐसे ही दिया लोगों को कि मिलना भी है किसी को तो मुस्कुरा के नहीं मिलते, प्यार मोहब्बत से नहीं मिलते, हर वक्त वो एक डर पैदा लोगों में डर पैदा करके रखा हमने अपने बारे में। तो ये हमें वो ये बर्ताव हमारे एटीट्यूड चेंज नहीं करना चाहिए हमें सबको कि हमारी जो आउटर अपीयरेंस है दुनिया को हम दिखाए कि हम वो जालिम लोग नहीं है।
मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताता हूँ कि ऐसी कोई बात हमारे दिन
मज़हब ये नहीं किया,
हमारे मज़हब में कोई ऐसी बात नहीं, हमारे पैगम्बर ने इसकी तालीम नहीं दी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसियों वाक़यात मैं आपको बता सकता हूँ जिनमें आपने अपने सहाबा-ए-किराम के साथ बहुत लतीफ़ बातें की हैं। بہت خوبصورتی سے کی ہیں، بلکہ اس کی بہت اچھی تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے آدمی کو ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہیے. یعنی غصے کا اظہار بھی اگر کیا ہے تو وہ بھی کس خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، کوئی تنبیہ کی ہے تو وہ بھی کیسے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں اس طریقے سے ہماری معاشرت یا ہماری تہذیب نہیں بن سکیں. آپ اس المناک صورتحال کا اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی زندگی بھر کی پونجی خرچ کر کے امریکہ برطانیہ جانے کی صحیح کرتا ہے، وہاں جا کے رہتا ہے، وہاں جا کے اسٹیبلش ہو جاتا ہے، بہت سی مراعات سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ اس سے علیحدگی میں ملاقات کریں وہ گالیاں دے رہا ہوگا امریکہ کو بھی اور برطانیہ. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی بجائے اس کے
کافر ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہر چیز.
میں تو بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک میسج اور پیغام ہے مغرب کو دینے کے لیے، وہ ہمیں شائستگی، تہذیب اور دلیل کے ساتھ ان تک پہنچانا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یعنی یہ جتنی ایجادات ہیں جن سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ انہوں نے ہی انسانیت کو دی ہیں. پھر یہ کہ بہت سے کانسیپٹس ہیں معیشت اور سیاست کے بارے میں، جن کانسیپٹس کو انہوں نے سسٹمز میں بدل دیا ہے اور ان کو آپ کو سسٹمز میں بدل کے دکھایا ہے، عملاً دکھایا ہے. یہ اس وقت آپ پاکستان میں بحث کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے یہ اختیارات ہیں، پارلیمنٹ کے یہ اختیارات ہیں، یہ تصورات کن لوگوں نے اس نظام میں بدلے ہیں؟ انہوں نے بدلے ہیں. تو انسانوں کو ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار نہیں.
ہم سے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ عورتیں بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہ ضرور جانا چاہتی ہیں کہ عورتوں سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے نامحرم مرد کے ساتھ مسکرانا یا نامحرم مرد کا عورت کے سے مسکرا کے بات کرنا، اس کو دین کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟
دیکھیے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں وہ بڑی وضاحت سے سورہ نور میں بیان کر دی ہیں. پہلی بات، اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ کہی ہے کہ جب میل ملاقات کا موقع ہو تو تمہاری نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے. اس کو قرآن مجید غز بصر کہتا ہے، یعنی نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر دیکھ کے چلیں گے اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں گے. نہیں، آپ دیکھیے جس طرح کے دیکھا جاتا ہے اور جیسے کہ مہذب لوگ دیکھتے ہیں. نگاہ کے اندر تہذیب پیدا کریں، اس کے اندر پاکیزگی پیدا کریں. دوسری چیز یہ کہی ہے کہ شرمگاہوں کے بارے میں، کیونکہ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے دین کی بنیادی قدروں میں سے یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. تو اس کی حفاظت کے بارے میں تلقین کی ہے. اس کے بعد خواتین سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں غیر محرموں کے سامنے، کیونکہ خواتین زیب و زینت بھی کرتی ہیں. اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ اپنا جو دوپٹہ ہے یا جو ان کی چادر ہے وہ اپنے سینے پر لے کر رکھیں، کیونکہ سینہ بھی شرمگاہوں میں سے ہے. یہ چار باتیں یہ کہی گئی ہیں، نہ کسی کو حق ہے کہ ان پر کوئی اضافہ کرے، نہ کسی کو حق ہے کہ اس پر کمی کرے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین تو بالکل ٹھیک اس جگہ کھڑا ہوتا ہے جہاں تہذیب اور تزکیے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ہم اس میں کچھ اضافے کر کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. مسکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ مسکرانے کی نوعیت کیا ہے.
جی
صحیح.
تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں انسانوں کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگانا یہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کوئی بات بتانی تھی تو وہ بتا دیتے، جب انہوں نے نہیں بتائی تو ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کریں. یہ ہے اصل میں ہماری تعلیم، کہ ہمارے عالم کو، ہمارے مبلغ کو، ہمارے دین سکھانے والے کو نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے، اس کو بشارتیں دینی چاہیے لوگوں کو، اور بتانا چاہیے کہ ان کا پروردگار بہت رحیم، بہت کریم ہے.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب، آپ نے اتنے تحمل سے اور مسکرا کے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. اقبال ملار والا صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ بلانے کا.
اور آپ نے گفتگو سنی، غامدی صاحب کی مسکراہٹ یقیناً سنت نبوی ہے، اسے اپنائیے اور اسی مختصر پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.